आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय सोमपाल शास्त्री जी, सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष कप्तान सिंह जी, उपाध्यक्ष श्रीमती ईशा जाखड़ जी, सेक्रेटरी अजीत सिंह जी, श्रीमती एसपी सिंह जी, राजपाल सोलंकी जी, रमेश चौधरी जी, अन्य सभी संस्थान से जुड़े महानुभाव अतिथि, छात्रों, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से इस सोसाइटी के निमंत्रण के लिए उनका आभार प्रदर्शित करता हूँ। आपने मुझे बुलाया और इस बात की ज़्यादा खुशी है कि ये सेकंड एसपी सिंह जी का मेमोरियल लेक्चर है। आपने शुरुआत की है इस लेक्चर की, उसके लिए भी आपको बधाई। जो कुछ आपने बताया अभी कप्तान सिंह जी ने, इस संस्थान की जो प्रोग्रेस हुई है और जो जो इन्होंने ऊंचाइयां हासिल की हैं, उसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूं। एसपी सिंह जी से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा। मुझे याद है मैं जब यूके से वापस आया था पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च करके, तो हरिंदर मिर्जा जी की शादी में हम जयपुर में थे, तब वहाँ मिलना हुआ। वो 1970 की बात है। तब से उनका व्यक्तित्व सभी को आकर्षित करता रहा, मुझे भी, यंग था मैं, और बहुत होनहार वो व्यक्ति रहे। उन्होंने राम निवास जी के साथ मिलकर पूरी अपनी लाइफ में काम किया और राम निवास जी के कहने से ही वो फिर यहाँ इस संस्था से भी जुड़े, और जो कुछ उन्होंने किया इस संस्था को आगे बढ़ाने में, जो उनका योगदान है उसको कप्तान सिंह जी ने जो कहा, तो हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। और मिसेज शकुंतला जी भी आज यहाँ मौजूद हैं, इस बात की बहुत खुशी है। और मुझे कहा गया कि आप कृषि का भविष्य क्या होगा भारत में, उसके ऊपर कुछ चर्चा करें। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी है कि सोमपाल जी आज यहाँ मुख्य अतिथि हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैंने इनके साथ भी काम किया, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर के थे जब मैं डायरेक्टर जनरल रहा। जाखड़ साहब से शुरू किया था मैंने जब वो मंत्री थे, और उन सबको याद करें तो बहुत ही आज गर्व होता है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। पर सोमपाल जी का कृषि में जो हमेशा जान रहा है, और किसानों की जो पीड़ा इनके दिल में है, उसका मेरे ख्याल से एहसास आप सबको है, और ये जब बोलेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं उस बारे में ज़्यादा न कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी संस्थाएं बहुत बनी हैं, बनती हैं, और कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बिल्ट फ्रॉम दी ब्रिक एंड मोर्टार। इंस्टीट्यूशंस के पीछे लोगों का योगदान होता है, और अच्छी लीडरशिप का बहुत बड़ा योगदान होता है, और उस योगदान में एसपी सिंह जी ने जो इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाया, इसके लिए 30 साल जो उन्होंने लगाए वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, और मुझे खुशी है कि उनके नाम पर ये सेकंड मेमोरियल लेक्चर मुझे देने का अवसर मिला है। मैं शुरू करता हूँ। भारत में कृषि हमेशा से जो है एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन करता रहा है। हम कहते आए हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, और हमने कभी भी कृषक को प्रधान नहीं बनाया, और यही मेरी इस टॉक की जो आज रूपरेखा है कि कृषि प्रधान देश अब भारत में कृषक प्रधान देश भी बन जाए तो किसानों का भी फायदा होगा और देश का भी फायदा होगा। भारत में कृषि ने बहुत तरक्की की है। मुझे याद है मेरी मदर कहा करती थी कि उन्हें याद तो नहीं था कि मैं कब पैदा हुआ, कौन से साल में, पर वो कहती थी जब बंगाल का फेमिन हुआ था तब पैदा हुआ था ये, वो मेरा इंट्रोडक्शन था। और बंगाल का फेमिन कोई बीमारी से नहीं था, वो सिर्फ भुखमरी से था और रॉन्ग पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स से था। और मालूम है कितने लोग मरे। अब आज कोरोना की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कोरोना से भी अब तक उतने नहीं मरे जितने हमारे उस समय बंगाल फेमिन से लोग मरे थे। 30 से 40 लाख लोग जो बंगाल फेमिन से, तो उस फेमिन को हम भूल ही गए थे। अब ये फिर कोरोना ने याद दिला दिया कि फेमिन भी कोई चीज़ होती है। वहाँ से लेके बाद में जब मैं यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जैसे पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, वहाँ पीएचडी करने आया था, तो वो समय था जब हरित क्रांति के बीज बोए जा रहे थे, और भारत में हम बाहर से अनाज मंगाते थे और हमारे पास में ख़रीदने को पैसा भी नहीं था, और हमने लाल गेहूं भी खाए हैं, और हमें भिखारी का जो है कटोरा भी कहा गया, बैगिंग बाउल भी कहा गया। उस स्थिति को देखें अगर, तो मैं अपनी लाइफ में, और उस टाइम में जब वो बीज यहाँ जयंती विलेज में बोए जाते थे, डॉक्टर बॉरलॉग, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन मेरे जो है वो टीचर भी रहे हैं, तो हम जाया करते थे और किसानों के साथ उन बीजों को लगाते थे, और किसानों को क्या देते थे, 100 ग्राम का पैकेट। 100 ग्राम के पैकेट से किसानों ने और अपनी आगे बढ़त की। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, और ऐसा डिसीजन था कि 18,000 टन्स ऑफ वीट सीड वाज इम्पोर्टेड। इतना ज़्यादा क्वांटिटी में कहीं और अच्छी किस्मों का बीज इम्पोर्ट नहीं किया गया। तो वो पॉलिसी मेकर्स भी थे, मेरे ख्याल से उस टाइम में इंदिरा गांधी जी थी, और वो बाहर जब अनाज के लिए मांगने गई तो US प्रेसिडेंट ने कहा कि ये हॉपलेस केस है, इसलिए हम आपको नहीं देंगे। तो तब ये कहा गया कि हमें कुछ करना है, अपने आप को आगे लाना है, और दिक्कतें हमारी हैं, दूसरों के नहीं हैं। तो उन दिक्कतों से हम आज आगे आए और हरित क्रांति आई। साइंस लेड थी, अगर साइंस नहीं होती तो शायद नहीं पॉसिबल था, पर उसमें नीतियों का भी योगदान था। अगर अच्छी नीति नहीं होती, अगर भाखड़ा डैम नहीं बना होगा, बना होता, इंदिरा गांधी कैनाल नहीं बनी होती, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज इफको क्रिप्को नहीं बने होते, और नेशनल सीड कॉरपोरेशन नहीं बनी होती, तो ये हरित क्रांति पॉसिबल नहीं थी। पर अच्छे बीजों को भी अगर आविष्कार से नहीं लाते तो वो भी पॉसिबल नहीं था, और वो भी अगर साझेदारी से, पार्टनरशिप से, विश्व की पार्टनरशिप, ये नहीं कि हम हिंदुस्तान में हैं तो हम सब कुछ हम ही कर लेंगे, हम ही माहिर हैं। तो योगदान रहा, गेहूं मेक्सिको से आया और धान जो है वो फिलीपींस आया, तो उन सबका योगदान मिल करके, और मेहनती किसान। मैं डॉक्टर बॉलॉक से एक बार बात कर रहा था, जिनको एक ही कृषि वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, और अब उन्होंने खुद अपनी मेहनत से वर्ल्ड फूड प्राइज़ की शुरुआत की। तो वो मैंने उनसे कहा कि आप अफ्रीका में, यहाँ तो हरित क्रांति आ गई, आप 20 साल से वहाँ काम कर रहे हो, वहाँ क्यों नहीं आती? तो बोले, राज मैं इतने अच्छे पॉलिसी सपोर्ट के लिए लोग कहाँ से लाऊं, और इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस और इतने अच्छा मानव संसाधन कहाँ से लाऊं जो यहाँ मौजूद है, जो एजुकेटेड आप जैसे लोग हो वो वहाँ नहीं हैं, और वहाँ हैं तो वो वहाँ काम नहीं करना चाहते, और वहाँ एड्स की बहुत बड़ी बीमारी थी, तो वो 2-4-5 साल में या तो रहते नहीं थे या छोड़ जाते थे। और तीसरा कि वहाँ के किसान खर्च नहीं करना चाहते। हमारे किसानों ने खर्च किया, आगे आए मेहनती किसान, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, जो जिससे हरित क्रांति का इलाका मानते हैं, तो ये सब कुछ संभव हो पाया। तो उन्होंने कहा कि इतने ये सारे जो फैक्टर्स हैं और पॉलिसी सपोर्ट से जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, और उस टाइम में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कृषि में हमारा 18% था, वो आज 9% के करीब आ गया है। अब हम चाहते हैं कि हरित क्रांति पूर्वी भारत में भी आए, और पूर्वी भारत में ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन हैं। पूर्वी भारत हमें और कई हरित क्रांतियाँ दे सकता है, परंतु वहाँ न तो सड़कें हैं, न वहाँ मार्केट है, न वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट जिस तरह के इधर हुए हैं उस तरह के हैं, और न वहाँ ज़मीन की ही जो जिसे हम कहते हैं ना कि लैंड होल्डिंग का जो काम था, और सब लोगों ने यहाँ पे जो लैंड लॉज लाए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये सब कुछ आगे होने के लिए हमें इन्वेस्ट फिर करना होगा, हमें उसी तरह से फिर योगदान देना होगा। तो कहने की बात यह है कि हम जो आयात करते थे, आज भारत कृषि में निर्यात करने में देश विश्व में 7वें नंबर पर है, जो कहीं नहीं होता था। आज 40 बिलियन यूएस डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इसकी संभावनाएं बहुत हैं, बहुत अधिक होंगी, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। हमने आबादी 4 गुना बढ़ाई जब से हम आज़ाद हुए। आज भी हम हर साल 1 ऑस्ट्रेलिया के बराबर अपनी आबादी को बढ़ाते हैं, 15 से 16 मिलियन पीपल ऐड कर रहे हैं। 1 ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा हम हर साल खिलाते हैं एडिशनल, और फिर भी पैदा करते हैं, और फिर हमारी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जिसमें दूध में हम दुनिया में सबसे आगे हो गए, जहाँ हमारा दूध का उत्पादन जो है 25-30 मिलियन टन था, वो अब 200 मिलियन टन पे पहुँच गया है। मछली पालन में हम आगे आ गए हैं, जो मुश्किल से 5 से 6 मिलियन टन हुआ करता था, वो भी समुद्री इलाकों में, अब इनलैंड फिशरी से हरियाणा, पंजाब, यूपी, गुजरात, राजस्थान में भी फिश प्रोडक्शन इनलैंड एक्वाकल्चर का होने लगा है, और उससे पैदावार बहुत आगे बढ़ी है। तो ये साइंस का योगदान है, और इसके साथ साथ नए प्रारूप को कृषि में लाने का भी अपना योगदान है। आज हमारे पास में गल्ले में 70 से 90 मिलियन टन तक का अनाज है, जबकि हम 10 मिलियन टन जो मंगाते थे, उस टाइम में फूड सिक्योरिटी थी कि कौन सा जहाज़ कहाँ पहुँचेगा, शिप टू माउथ कहाँ करते थे, कौन सा जहाज़ कहाँ पहुँचेगा और कहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो हमारी सिक्योरिटी थी फूड की। आज हमारे पास में कोरोना काल से दूसरे लोग सब परेशान हो रहे हैं विश्व में, और हमारे पास इतना अनाज है कि अब 2 साल भी और लॉकडाउन रहे तो हम अपनी जनता को खिला सकते हैं। तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं, ये कम जो है मैं समझता हूँ हमारा जो भी प्रगति हुई है उसकी सराहना करने की आवश्यकता होगी, और मुझे याद है जब 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया गया था, सोमपाल जी भी वहाँ होंगे, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में आर के नारायण जी ने एड्रेस किया था, और तब के कहा था कि अगर 50 साल में भारत ने कोई दो इम्पोर्टेंट तरक्की की है तो एक तो कृषि में आत्मनिर्भरता और एक मेडिकल में हमने अपनी आयु को 32 से 64 साल कर दिया, डबल कर दी। तो हेल्थ भी डबल कैसे होती अगर खाना नहीं होता तो? तो मैं तो समझता हूँ कि कृषि का योगदान दोनों तरफ रहा, और आज भी हम कह रहे हैं कि कोरोना से अगर बचना है तो सात्विक अच्छा पौष्टिक आहार और अच्छा पौष्टिक खाना अगर है तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो खेती का योगदान मैं ज़रा इतना ही बताना चाहता था। विश्व में हम पहले हैं दूध में और दलहन में। दलहन में हम ही तो ज़्यादा पैदा करते हैं, हम ही सबसे ज़्यादा खाते हैं, और हम इम्पोर्ट भी करने लगे हैं। पर अभी जो जोर पिछले 5-7 साल से दिया गया उससे जो मिशन चला पल्सेस पे, उससे हमने वापस अपनी 4 मिलियन टन की प्रोडक्शन को बढ़ाया है, और हम समझते हैं कि आत्मनिर्भर हो सकते हैं अगर हमारी पॉलिसी ठीक हों और किसानों को सहयोग दिया जाए। हम दूसरे नंबर हैं धान पर, गेहूं में हम दूसरे नंबर हैं, हम शीघ्र ही नंबर 1 हो जाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। फलों में और सब्जियों में, कहाँ फल सब्जी होते थे जब मैं पढ़ता था, और मेरे दादाजी एक बार बीमार हुए तो वो डॉक्टर को बुलाया, एक डॉक्टर पास में था, उसको शहर से रिक्वेस्ट करके बुलाया, उन्होंने कहा जी इनको फल खिलाओ। तो घर वालों ने कहा जा अजमेर जा कर के फल लेके आ। तो फल के लिए मुझे दुकान ढूंढनी पड़ी, और वो 2-3 दुकानें थी, वो भी विक्टोरिया हॉस्पिटल के सामने और कहीं हो। और आज आप देखिए कितना, कहाँ आप कहीं भी रेडी देख लो, कहीं भी किसी गांव में पहुंच जाओ, और हमारी खाद्यान्नों की जो पैदावार है वो तो 308 मिलियन टन हुई, जो हमने 6 गुना की पैदावार, 4 पुरुषों की या हमारी पॉपुलेशन की जो बढ़त हुई वो 4 गुना, खाद्यान्नों की 6 गुना, और जो हॉर्टिकल्चर की है वो उससे भी आगे बढ़ गई है पिछले 5 सालों से। तो ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? अगर जाकर साहब ने कीनो का गार्डन वहाँ नहीं लगाया होता बोर में, तो कीनो नॉर्थ में आया होता? अगर बेबी कॉर्न हम इंट्रोड्यूस करके नहीं लाए होते थाईलैंड से, तो आज बेबी कॉर्न हर जो है सब्जी वाले के पास में बिक रहा है, मिल रहा है, तो वो आया होता? तो नए तरीकों को, नई चीज़ों को लाने के लिए बहुत कुछ किया गया है, और उसका योगदान हमारे किसान भाइयों का है। और अब तो हम जो है चीनी में, अभी मैं समझता हूँ कि जो अभी रिसेंट क्रांति हुई है उसको, इसको भी अगर श्वेत कहो क्योंकि चीनी श्वेत है, या गन्ने की क्रांति कहा जाए, तो हमारे पास में 4 मिलियन टन एक्स्ट्रा चीनी गल्ले में पड़ी हुई है, जो हम आज बाहर भेज नहीं पा रहे क्योंकि हमारी लागत बाहर वालों की लागत से ज़्यादा। तो हमें अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा। तो ये एक और बात है जो जिसके ऊपर मैं और चर्चा भी करूँगा, और इसमें सेकेंड जनरेशन प्रॉब्लम ग्रीन रिवॉल्यूशन की आ रही है। हमने सब ने मिलकर के गेहूं धान में तो बढ़ोतरी की, और गेहूं धान से हमने अपने प्राकृतिक संसाधन का भी बहुत दुरुपयोग किया है, उसका सदुपयोग करना, और ये कोरोना ने बताया है कि नेचर के अगेंस्ट में नमत एक्ट कीजिए, नेचर आपको ख़त्म कर देगी। और अगर हम वापस अपने संसाधनों को, अभी बात हो रही थी सोमपाल जी कह रहे थे कि जमीन की उपजाऊ शक्ति तो बहुत कम हो गई, मैं कहता हूँ सोमपाल जी इसी साल हमारे एक वैज्ञानिक को वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है, डॉक्टर रतन लाल, जो यहाँ आईआरआई से पीएचडी करके गए थे, मेरे साथी हैं, और वो सोयल साइंटिस्ट हैं, वर्ल्ड में माने हुए सोयल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अभी लेक्चर एक करवाया था मैंने पूसा इंस्टीट्यूट में, तो उन्होंने कहा था कि कि हमारी जो सॉयल्स है हरित क्रांति इलाके में वो अब उर्वरा शक्ति की लेवल से बहुत कम हो गई हैं। अगर हम इनका ध्यान नहीं देंगे तो आपकी खुद की हेल्थ का भी कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए आज वन हेल्थ कंसेप्ट भी आया है, सॉयल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, और वन हेल्थ का मिशन भी शुरू होने लगा है। तो आवश्यक हो गया है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को, और पानी, हर आदमी धान लगाने लगा, पानी ज़मीन में नीचे है या नहीं है, रिसाइकिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमने तो उसको फ्लड करके इरिगेट करना है। भाई फ्लड इरिगेशन क्यों, माइक्रो इरिगेशन क्यों नहीं, बूंद बूंद की खेती क्यों नहीं, फवारे की खेती क्यों नहीं। आज हम जितना फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, हमारा करीब करीब 32 मिलियन टन का जो है खपत है, और हम प्रति हेक्टेयर में 136 किलोग्राम एनपीके यूज़ कर रहे हैं। 136 क्यों जब यूज़ तो कर रहे हैं, पर जो हमारी एफिशिएंसी है इस यूज़ की वो 30% ही है। इसका मतलब 70% तो हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे, डाल तो रहे हैं, पैसा भी लग रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा, खेती को अच्छी तरीके से करना होगा, जिसे हम कहते हैं गुड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की तरफ जाना होगा। तो उसके कई और उपाय हैं, उसके बारे में फिर बात करूँगा। तो कहने की बात यह है कि इन सब के होते हुए, एक तो जितनी हम और इनपुट डालते हैं तो उतना वापस आउटपुट नहीं मिल रहा। पहले अगर 1 किलो डालते थे आप न्यूट्रिएंट, तो आपको करीब 10-12 किलो मिलते थे, अब वो 1 किलो डालते हो तो 4 किलो भी नहीं मिलते। तो वहाँ एक तो वो कमी हो गई, फैक्टर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गया। सेकंड, हमने अपनी उर्वरा शक्ति को ख़राब कर दिया, हम अपने पानी को खूब यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है हमने बीमारियों का भी प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ी है, और हमारा वातावरण, भारत में हम लकी हैं वैसे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा कल्टीवेबल लैंड है दुनिया को देखें तो, 140 मिलियन हेक्टेयर, और ये 140 मिलियन हेक्टेयर लैंड है वो आज 50 साल से उसी लेवल पर है, 140, 141, 142, 144, मतलब अब हमारे पास में और विस्तार करने की आवश्यकता उधर नहीं रही है। अब तो हमें जो कहते हैं ना हॉरिजेंटल नहीं, अब वर्टिकल जाना होगा, वर्टिकल के लिए हमारी पैदा को और बढ़ाना होगा और किसानों को सुदृढ़ करना होगा। उसके लिए जो है बातें हैं, भारत सरकार ने एक स्कीम भी चलाई है, डबलिंग फार्मर्स इनकम, मेरे ख्याल से सोमपाल जी ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे, आंकड़े देंगे, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली 20 सालों में हमारी आमदनी जो है, हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि पिछली डबल जो है उसके लिए 20 साल लगे थे, अब आप 5 साल में कैसे कर दोगे। और ये भी कहा जा रहा है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी अगर किसानों को खेती से बाहर निकाल दिया जाए। अरे किसानों को खेती से बाहर निकाल के कहाँ ले जाओगे भाई, अभी ये 50% आबादी आपके संभाले बैठे हैं, खिला रहे हैं, खुद खा रहे हैं, खुद भी उपभोक्ता है, वो भी आपका कंज्यूम करते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं, उनके आसपास 50% जो पॉपुलेशन है, तो इसको अगर आप कह रहे हो कि बाहर ले जाओ तो वो क्या करेंगे, सड़कों पे आकर के क्या भीख मांगेंगे, उनके पास क्या स्किल है, कौन से स्किल का काम करेंगे। तो ये जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना, और ये बात छोटी नहीं है, हमारे प्रिंसिपल्स इकोनॉमिस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, या अभी जो हमारे मेंबर कृषि नीति आयोग के हैं, उनका भी यही कहना है, और ये भी मान रहे हैं कि ये 5 साल में नहीं, कम से कम 8-9 साल तो इसमें लगेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर रूटीन में बिजनेस एज यूजुअल जो हम कर रहे हैं चलता रहा तो 8-10 साल नहीं, 15 साल भी लग सकते हैं। तो ये दूनी आमदनी करने के लिए हमें नए तरीके किसानों को देने होंगे और उनको सुदृढ़ करना होगा, और उसके लिए मैं आगे आके बात करूंगा कि युवा पीढ़ी को हमें आगे लाना होगा, और युवा पीढ़ी में युवतियों को भी, सिर्फ युवक नहीं युवतियों को भी, उनका भी योगदान। और जिस जैसे पहले बताया गया कि मैंने वर्ल्ड कांग्रेस वीमन की पहली वर्ल्ड कांग्रेस यहाँ कराई थी, और जब जो 30 इंस्टीट्यूट ICR में बने उसमें एक इंस्टीट्यूट वो भी शायद दुनिया में पहला होगा जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीमन इन एग्रीकल्चर है। जब तक आप रिसर्च के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उनकी जो तकलीफें हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उनके लिए नई तकनीकियाँ नहीं निकालेंगे, तो वो तो हमेशा जो है रिसीविंग एंड पे ही रहेंगी। तो इसके लिए कहने की बात यह है कि जो ये औसतन आय 15,000 के आसपास की है, इसको 30,000 कैसे किया जाएगा, या ये सही है या और आगे क्या होगा, सोमपाल जी से हम सुनना चाहेंगे। पर अब सवाल ये आता है कि कृषक को प्रधान बनाया कैसे जाए। कहना तो आसान है, भारत सरकार ने भी फट से हमारी बात मानी, हमने टास्क की तरफ से भी हम कहते रहे कि एक तो किसानों के लिए आप कुछ स्पेशल काम शुरू कीजिए। किसान को चाहिए सबसे ज़्यादा ज्ञान और अच्छा ज्ञान, सब्सिडी बाद में चाहिए उसको, उसको ज्ञान पहला चाहिए। जब मैंने हरियाणा किसान आयोग का जब मैं चेयरमैन था तो मैंने कहा भाई ये तो हरित क्रांति के किसान हैं, बुला के ऐसे ही बातें गोष्ठियों में की कि आपकी क्या आवश्यकता है। कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी तो दो ही आवश्यकताएं हैं, एक तो हमें अच्छा ज्ञान दे दो और एक हमारे बच्चों को नौकरी लगवा दो। इसका मतलब है कि कृषि में बच्चों का रुझान नहीं है, इनको कहीं बाहर बढ़ा दो तो इनकी ज़िंदगी बन जाएगी, मतलब खेती में ज़िंदगी नहीं बनेगी। और जब भी युवाओं से बात करता हूँ तो कहते हैं जी हम खेती करने को तैयार हैं, पर आप ये बताओ मैं अपने बच्चों को जिस स्कूल में आपने अपने बेटे को भेजा है वहाँ पढ़ा सकूँगा क्या। मेरी जो जो स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है कृषि को, मैंने जब कृषि विषय लिया था, पढ़ने में मैं इतना बुरा नहीं था, पर जब लिया तो सारे दूसरे तो मेडिकल या इंजीनियरिंग में जा रहे थे जो अच्छे पढ़े लिखे, और मेरे पे हंसते थे कि तू कृषि में क्या करेगा। तो कृषि तो मतलब आज भी कृषि स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को धन्यवाद दिया जाए कि पहली बार हम कहते आए हैं कि बच्चों का रुझान कृषि में कब होगा, जब वो जानते ही नहीं कि आलू कहाँ लगता है। और आधे से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में या यूनिवर्सिटीज़ में जो हमने लैंड ग्रांट सिस्टम में बनाई, वहाँ पे अब सारे जो है वो अर्बन एरियाज़ के आ रहे हैं, रूरल एरियाज़ के तो है ही नहीं, और रूरल एरियाज़ के बच्चों की कोई रिजर्वेशन ही नहीं। तो नेचुरल है कि वो बाहर वाले आके और एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। तो जब एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्री वालों से हमने कहा भाई हमारे बच्चों को आप प्लेसमेंट क्यों नहीं देते। तो बोले प्लेसमेंट क्या दें साहब, इनको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, ये जानते नहीं है, इनको हमें साल डेढ़ साल और ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो हमने शुरू किया एकदम 6 महीने का कोर्स, ICR से फुल पेमेंट पे, और अभी भी चल रहा है, वो है रूरल वर्क एक्सपीरियंस जो है बच्चों को दिया जाए। 6 महीने हर बच्चे को जो है वो फाइनल ईयर में गांव में भेजो और किसानों के साथ रहने दो और सीखने दो। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा, तो सवाल ये है अब एजुकेशन में अगर स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगी तो रुचि कैसे आएगी। लोग तो ये समझते हैं एग्रीकल्चर तो सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई साइंस ही नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर जब हंस रहे थे तो वो वाली बात आज भी लागू होती है, तो ये अच्छी एक शुरुआत हुई है। तो मैं कह रहा था भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया कि नाम बदल दिया कृषि मंत्रालय का, जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो फार्मर वेलफेयर तो लगी, अब वेलफेयर कब होगी वो बात अलग है, पर वेलफेयर का नाम तो आया ना, कम से कम उस तरफ रुझान या उस तरफ रुचि तो एक बड़ी, अगर बड़ी है तो कुछ हो गई मेरे ख्याल से। और ये जो किसानों से कहा कि आपको ज्ञान चाहिए, तो हमने एक ट्रेन, हुड्डा जी उस टाइम में चीफ मिनिस्टर थे, एक स्पेशल ट्रेन वहाँ से हमने चलवाई, क्या नाम, चंडीगढ़ से, और उसको 10 इंस्टीट्यूशंस में भेजा साउथ में, और ट्रेन पूरी फुल थी, 1,000 लोग थे उसमें किसान, और 10 इंस्टीट्यूशन से जब वापस आए तो हमने पूछा आपको कैसा लगा, कहता है इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। वो कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अगर आपने हमें अच्छी चीज़ दिखा दी तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये एक और आवश्यक बात है कि ज्ञान को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो हमने सरकार से कहा कि भाई आप सारी जगह की हर तरह की चैनल है, हर तरह के जो है वो टीवी पे प्रोग्राम आते हैं, कृषक की तो कोई एक चैनल ही नहीं है। तो ये डीडी किसान बनाया गया और डीडी किसान पहली चैनल है जो 24 घंटे के लिए, पर उस पर प्रोग्राम क्या आते हैं वो अगर आप देखो तो हंसोगे। और वो कहते हैं गन्ना किसान भाइयों शक्कर बनाने के लिए होता है। अब ये भी बताने की बात है, चीनी बनाने के लिए गन्ना होता है, ये भी बताने की बात है। तो अगर इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो वो कौन देखेगा उसको, तो उसके ऊपर। पर शुरुआत तो हुई ना, शुरुआत हुई तो उसको और आगे हमें ठीक करने की आवश्यकता होगी। तो अब प्रश्न आता है कि किसान दुनिया आय के लिए तीन, मैं समझता हूँ, और एक वो बुकलेट भी है हिंदी पे आप छपी हुई, किसान की आय को दूना कैसे किया जाए, तो मैंने भारत सरकार को भी दी हुई है। तो पहली बात तो यह कि हमें अपनी लागत को कम करना है। लागत को कम करने के लिए बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे की जा सकती है। आज हम जोत क्यों करते हैं, खेत गेहूं काटा नहीं और जोत करके और जलाई पराली को धान की और गेहूं लगाने के लिए किया, या धान की जलाई और उसके बाद में गेहूं लगाने का प्रोग्राम किया। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको जीरो टिल्ड एग्रीकल्चर कहते हैं, उसमें आपको जोतने की ज़रूरत ही नहीं है। और जोतने के लिए सिर्फ मशीनरी चाहिए जिससे आप डायरेक्टली बीज को बीज सकें, और वो पैदावार भी आपकी उतनी है। पर उसका ज्ञान किसान तक कहाँ पहुँचा और वो मशीनरी कहाँ तक पहुँची और उसके लिए सेंटर्स कहाँ बने, और हर किसान तो खरीद नहीं सकता। अब मैं अपने खेत पे, मैं भी एक किसान हूँ, अब 20 साल से खेती कर रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद। तो अब मेरे पास तो जानवर होते थे पहले, गोबर गैस प्लांट भी होता था, पर कोई अब जानवर घर में नहीं है। तो आप खेत जोतना है तो आप फ़ोन करिए, दो चार बच्चे हैं, दो चार युवा किसान हैं, फट से आके आप पे जोत जाएंगे और आप उसको उसका 150-200 रुपया जो प्रति बीघा का है दे दीजिए, और आपको न तो उसको रखना पड़ा न आपको उसकी कोई तकलीफ, और वो आपकी सेवा कर रहा है। तो ऐसी सेवाओं को पहुंचाना किसानों तक बहुत आवश्यक है। तो एक तो मैं कह रहा था कि नई तकनीकी को अपनाना जिससे लागत कम हो, और दूसरा ये है कि हमें जो है अब सिर्फ पैदा ही नहीं करना, पैदा करने के बाद उसकी कैसे वैल्यू एडिशन हो सकती है उसके ऊपर भी ध्यान देना। उसके बिना किसान का कोई जो है आगे जो है मैं समझता हूँ कि समाधान नहीं है। और उस वैल्यू एडिशन के लिए हमें चाहिएगा फिर ज्ञान, और ज्ञान के लिए उसके लिए चाहिए कि पॉलिसीज, और पॉलिसीज ऐसी कि जो किसानों को जो है प्रोत्साहित कर सके। अब वो अगर थोड़ा सा भी आपने प्रोसेसिंग कर दिया, अगर आंवला, मैं आंवला लगाता हूँ, आंवले का अगर आप पाउडर बना लो तो उसकी आपको ज़्यादा देर तक रख भी सकते हो और उसकी आमदनी भी ज़्यादा हो सकती है, पर अगर आपने पैक करके भेजा तो उस पर GST लग गई। तो किसान की तो मतलब मुसीबत एक नहीं है वहाँ पे भी। अब आप GST लाए हैं, किसान को कहते हैं इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई किसी तरह का दे आर नॉट पेइंग इनकम टैक्स, पर हर चीज़ खरीदो उसके ऊपर तो GST देते हो। तो वो बात है कि हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा, हम जो है अपने आप को मार्केट से जोड़ना होगा, और मार्केट से अगर नहीं जुड़ेंगे तो हमारा जो ये अब तक शोषण होता रहा है मिडल मैन से वो होता रहेगा और वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसलिए 1991 में जो है लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई थी, इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन हुआ। मैं कहता हूँ उस टाइम में मनमोहन सिंह जी कृषि में क्यों नहीं लिबरलाइजेशन लाए, कृषि को तो छोड़ दिया। चलो उनको इंडस्ट्री में बढ़े, हम आगे बढ़े, पर आज भी हमारा योगदान जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है वो 30% से भी अभी तक कंट्रीब्यूशन में आगे नहीं आ पाई है, जबकि कृषि का योगदान अभी भी 18 से 20% है हमारे नेशनल जीडीपी में। तो एग्रीकल्चर को अगर और उस टाइम प्रोत्साहन दिया जाता, अब अगर यहाँ पे मार्केटिंग के और नए संसाधन हों, और उसके लिए तभी संभव होगा जब हम किसान भाई एक दूसरे से मिल करके काम करेंगे। हर किसान हर गांव में कहीं जाके बात करो वो अपना खुद चौधरी है, किसी की बात सुनना नहीं चाहता। और सहकारिता की बात, सहकारिता गुजरात से चली दूध में, सहकारिता से हमें आगे जो कुछ हमने हासिल किया वो कोऑपरेटिव सेक्टर से हुआ। और अगर वो जानवर, अगेन ये भी सोमपाल जी का सब्जेक्ट है, लाइफ स्टॉक का बहुत जोर उस पर देते रहे हैं कि अगर लाइफ स्टॉक नहीं हो तो हम तो भूखे मर जाते हैं राजस्थान में। हमारे तो वहाँ पे आज है कल बारिश नहीं है, आज बारिश है। और अगर जानवर ना हो तो किसी के जेब में पैसा आ ही नहीं सकता, और आमदनी क्या है बाकी। तो ये एक सोचने की बात है कि हमें जो है हर तरफ से तरक्की करनी होगी। हमें खेती को, जो हमारी रूटीन खेती है, बिजनेस एज यूजुअल है, उसको हमें विभिन्नता लानी होगी। खेती में जब तक विभिन्नता नहीं लाएंगे, आप अमेरिका में जो है मोस्ट सस्टेनेबल सिस्टम है वो मक्के का और सोयाबीन का। एक साल तो सोयाबीन लगाते हैं, उसी खेत में दूसरे साल मक्का लगता है, मोस्ट सस्टेनेबल सिस्टम। और कोई जोत नहीं करते है, डायरेक्ट सीडिंग करते हैं। हम तो खेत दूसरे दिन जोतना चाहते हैं, आज कटा दूसरे दिन जोतना, और एक भी कोई उसमें नहीं होना चाहिए। तो उसका सॉइल इरोजन होता है, वाटर इरोजन होता है, उससे हमारी उर्वरकता शक्ति घट रही है, ऑर्गेनिक मैटर कम होता जा रहा है। तो इन सब बातों के ऊपर हमें आगे थोड़ा ध्यान देना होगा। अब रहा सवाल कि किया क्या जाए, भविष्य क्या है। बातें तो बहुत हो गई, कृषि भी इम्पोर्टेंट है, हम इसके साथ जुड़े भी हैं, और हमारे पास कोई साधन ही नहीं है, कहाँ जाए किसान, कहाँ जाए बेचारा। उसके पास में कोई रास्ता तो दिखाओ, और रास्ता दिखाओ तो। और बच्चे जो है, मैं आज भी देखता हूँ कि जिस घर में लड़का कोई नौकरी कर रहा है तो वो घर तो बिल्कुल ठीक ठाक है, और बाकी किसानों का, मेरे भाई बहनों का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और उनकी उम्र भी ज़्यादा है, दूसरों की तो उम्र भी कम है, क्योंकि वो उनको पेंशन मिल रही है, वो पेंशन से उनकी उम्र भी बढ़ रही है, दूसरों को वो भी नहीं है। तो अब हमें किस तरह से हम कृषि के अंदर लोगों को सक्षम बना पाएँ, और उसके लिए क्या भविष्य होना चाहिए। तो एक तो मैंने कहा कि अब गेहूँ धान को छोड़कर गन्ने को भी, गन्ने में भी पानी बहुत लगता है, और लगता है तो उसमें फिर हम ऐसी खेती करें जिसमें पानी की कम कमी हो, और ऐसी खेती करें जो जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट जो डालते हैं उसका वेस्टेज ना हो, ऐसी भी खेती करें जिसमें केमिकल कॉस्टली न्यूट्रिएंट ना हो, बायो फर्टिलाइजर हो, बायो पेस्टिसाइड्स हो, तो वो भी किच किए जा सकते हैं। तो इन सब को देखते हुए मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ आगे करने की संभावना है। हमें सिर्फ डाइवर्सिफाई नहीं करना, हमें जो है वो स्पेशलिटी खेती की तरफ भी जाना होगा। जो कहते हैं ना कि लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप, जैसे जो दालों के मसाले हैं सीड स्पाइसेस उनके ऊपर, या जैसे फूल है, या जैसे सब्जियां हैं, सब्जियों में भी दूसरी सब्जियां, जैसे अब आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से जो है देखते हैं, कैप्सिकम भी आ गया, टमाटर भी आ गए, और खीरा भी दूसरा आ गया जो बाहर वाला खीरा है, और हर घर घर में जा रहा है, और उसकी पैदावार 10 गुना है बजाय इसके, और एरिया भी बहुत कम है। हमें वर्टिकल खेती की तरफ भी जाना होगा, ताकि शहर के आसपास के किसान भाई वर्टिकल खेती भी कर सकें। मैं बॉस्टन में था अपने बेटे के पास में, तो वहाँ देखा कि जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड के स्टॉल लगे हुए हैं। ऑर्गेनिक फूड कम से कम डेढ़ से दुना प्राइस है, तो ऐसे नहीं है कि लोग दूसरा नहीं खरीदते, पर जिनके पास पैसा है वो खरीदें। तो वहाँ पे मैंने कहा ये ऑर्गेनिक फूड कहाँ, और वो मोस्टली लीफी सलाद है, लीफी वेजिटेबल्स है, धनिया है, और ये इस तरह के, या जैसे आप कहते हो उसको ब्रसल स्प्राउट है या एस्परेगस है, तो इस तरह की वो पैदा करते हैं उसमें। और क्या है, वो कंटेनर है, कंटेनर फालतू पड़े रहते हैं ना जिसमें सामान आता है, शिप से आता है या ट्रेन से जाता है, तो फालतू के कंटेनर को उन्होंने जो है रिपर्पज़ किया हुआ है, रिपर्पज कंटेनर्स, और एक कंटेनर से 2 एकड़ के बराबर पैदा ले लेते हैं। तो जानकारी कहाँ है? आज हमारा यहाँ एक किसान है, अभी हमें हरियाणा में ही मैंने प्रोत्साहित किया था 2 किसानों को, उनको अवार्ड भी दिलवाया, बेस्ट फार्मर अवार्ड, और अब उनको पिछले साल पद्मश्री अवार्ड भी मिल गया। और पद्मश्री अवार्ड कैसे मिला कि वो किसान का बेटा है, कुछ नहीं कर पाया, फादर ने कहा तू तो यूँ ही नालायक है, कुछ नहीं करेगा, तो उसने कहा जी मैं तो वाकई कुछ नहीं करूँगा, पर मेरे एक बात समझ में आई, आप मुझे 1 एकड़ ज़मीन दे दो। वो बोले क्या करेगा, कहते आपकी तो खारी ज़मीन है, मैं इसके अंदर टैंक बढ़ाऊँगा और इसमें मछली पालूँगा। अब किसने सोचा मछली, हरियाणा में उस टाइम में मछली, अरे मछली कौन खाएगा, सवाल ही नहीं है, तो वो हमारा भोजन भी नहीं है, हम पैदा भी क्यों करें। तो उसने वहाँ से शुरू किया, आज वो करनाल में है, सुल्तान सिंह उसका नाम है, उसकी सक्सेस स्टोरी भी हमने पब्लिश की है। तो आज वो नॉर्थ इंडिया का जो है फिश सीड का किंग माना जाता है। तो और दुनिया में सब जगह जाके आया हुआ है, और जैसे आपके मैकडोनाल्ड के आउटलेट है, उसने अपने फिश बाइट के आउटलेट खोल दिए है, और वो फिश कटलेट बना के एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, पर वो जानकारी उससे पूछा कहाँ से लाया, भाई कहता मैं खुद ही गया था, मुझे किसी ने नहीं दी, या फिर वो केवीकेस में लोग गए वहाँ से जानकारी लेकर आए। कृषि विज्ञान केंद्रों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिन्होंने अच्छा काम किया है वो वाकई सराहनीय है। और अब आप सोनीपत चले जाइए, सारे देश में जो आप आज देखें तो मशरूम का हाइएस्ट प्रोडक्शन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का है। किसानों से पूछो कहाँ से लाए टेक्नोलॉजी, कहता जी अपने आप सीखी, कोई सेंटर वेंटर इंस्टीट्यूशन वगैरह ने नहीं दिया हमें। तो ये ज्ञान मन में अगर है तो ज्ञान भी आ जाता है, उसके लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। तो ऐसे पिता ना बने कि अगर बेटा कहे कि मैं कुछ नई चीज़ करना चाहता हूँ तो मैं तुझे 1 एकड़ ज़मीन नहीं दूंगा। ये एक हमारा विचार और बदलने की भी आवश्यकता होगी। और बहुत कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मैं कह सकता हूँ, समय का अभाव है और सोमपाल जी को भी हमें सुनना है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आगे के लिए जब हम यहाँ से भिखारी के कटोरे से आत्मनिर्भर और आयात से निर्यात पे आ गए, तो मैं समझता हूँ कि अगली जनरेशन, ये मेरी जनरेशन की बात कह रहा हूँ, जो मैंने देखा, जो मैंने कहा बंगाल फैमिन से लेके आज की जो हालत है, तो आगे की जनरेशन इसे और आगे ले जाएगी। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि भारत के पास अपनी खुद की क्षमता है कंजम्पशन की, इतनी जो है, जो हमारी, हम कहते हैं ना कि हमारे इतने लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो ये खपत भी तो करते हैं, हमारा कंजम्पशन है। आज ब्राज़ील हॉर्टिकल्चर में 1 है, हम 2 हैं, पर हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। ब्राज़ील जो है वो सारा एक्सपोर्ट ना करे तो मर जाएगा, कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, कौन खाएगा उसको। और आज चाइना है वो वेजिटेबल में 1 है, हम 2 है, पर चाइना के पास भी पॉपुलेशन है, वो इसको खपत कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि हमारी खुद की एक इंटरनल मार्केट बड़ा स्ट्रांग है, इसको हमें और आगे एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है, इनको नई नई चीज़ें देने की आवश्यकता है। अब आप अगर सरसों उगा रहे हो तो मक्खी पालन भी कर सकते हो, हनी प्रोडक्शन भी कर सकते हो। तो मतलब ये इसको सेकेंडरी एग्रीकल्चर, प्राइमरी एग्रीकल्चर नहीं, सेकेंडरी भी साथ साथ जहाँ जहाँ हम कर सके मशरूम प्रोडक्शन कर सकते हो। आपने धान की पराली को लेकर के मशरूम प्रोड्यूस कर लिया, तो पर उनकी जानकारी देखें जाए तो बहुत साइंटिफिक है। आप हिसार में 2-4-10 किसान लगाते हैं, वो ये क्या कहते हैं इसको ये तो इसकी स्ट्रॉबेरी लगाते हैं और वहीं पे उसको प्रोसेस करते हैं और वहाँ पे मार्केट उनका बना हुआ है। ये जो चौहान बेबी कॉर्न लगाता है, सारा गांव बेबी कॉर्न लगाता है, जिसको पद्मश्री मिला दूसरे को, सारा गांव बेबी कॉर्न लगाता है और सब सहकारिता से काम करते हैं। सब बच्चे स्कूल से आने के बाद घर में बैठ के और बेबी कॉर्न को छील करके उनके पैकेट बनाते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, क्योंकि वो पहले मंडी में कट्टा लेके जाते थे, पैसा नहीं मिलता था। तो हमने उनको सलाह दी, भाई ऐसा मत करो, एक थोड़ा सा कोल्ड स्टोरेज बना लो, आपस में सहकारिता कर लो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, या फिर अब आजकल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, उसका फ़ायदा लो। हमें ये भी नहीं पता किसानों को कि सरकार से क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। मैं हरियाणा किसान आयोग में जब था तो मैंने किसानों से पूछा, उन्होंने कहा जी हमें कुछ नहीं पता, और किससे जाके मांगे, कोई नॉलेज ही नहीं है। तो उस नॉलेज को एकत्रित करने में मुझे 6 महीने लगे थे और एक छोटी सी बुकलेट निकाली थी। वो बुकलेट थी कि भाई क्या क्या स्कीमें हैं और क्या क्या आपको जो है फ़ायदे हो सकते हैं और किस आदमी को कॉन्टेक्ट करना है और उसका टेलीफोन नंबर क्या है। तो ये भी सारी जब तक आगे नहीं पहुँचेगी तो इनके लिए युवाओं को अब आगे लाना होगा, उन्हें हमें। अब आप देखें ना, मेडिसिन में, फार्मेसी में कोई जो पढ़ा लिखा है, जो फार्मेसिस्ट है, वही फार्मेसी लगा सकता है। हमारी दुकानों में हर तरह का जो है वो पेस्टिसाइड बिकता है, तो पेस्टिसाइड क्यों ना ट्रेंड ग्रेजुएट, और ग्रेजुएट ही क्यों, अब तो हम वोकेशनल ट्रेनिंग दें। और मैं कहूँगा कि ऐसी संस्थान जो सिर्फ डिग्री के साथ तरफ जा रही है, अब आवश्यकता है कि गांव वालों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी, जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज हों, वो शुरू किए जाए। नर्सरी कैसे लगानी है, आज मैं फल लगाता हूँ और फलों की खेती कर रहा हूँ, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अच्छा फल का पौधा कहाँ से लाया जाए। अगर वही गलती हो गई तो वहीं ख़त्म हो गया। तो किसी को सिखा दो, समझा दो, उसका रोज़गार चल जाएगा और वो जॉब सीकर नहीं होगा, वो जॉब क्रिएटर हो जाएगा। तो हमें ग्रेजुएट्स को अब जॉब सीकर ना करके जॉब क्रिएटर करना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप पे लाना होगा। अब ये कहते तो हैं कि हम बायो फर्टिलाइज़र, अब भाई बायो फर्टिलाइज़र 32 मिलियन टन वो है, उसको अगर रिप्लेस करोगे तो कहाँ से बायो फर्टिलाइज़र लाओगे, कितना प्रोड्यूस करोगे। 4% तक प्रोड्यूस हो रहा है, आज हम 25 साल से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। बायो पेस्टिसाइड, पहली बार मैंने उसका रजिस्ट्रेशन शुरू कराया था जब मैं चेयरमैन रजिस्ट्रेशन कमेटी था, तो मैंने कहा बायो पेस्टिसाइड आने चाहिए, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड आने चाहिए, पर उसका भी कितना प्रोड्यूस हो रहा है और उनकी जो है इम्पोर्टेंस है, पर उसकी नॉलेज भी चाहिए। तो इसकी बहुत सारी कुछ वो हैं। अब अंत में 4-5 बातें कहना चाहूँगा कि एक तो हमने जाकिर साहब के टाइम में शुरुआत की थी एग्रीकल्चर पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और उसको टाइम लगा पास होते होते, नीतीश कुमार जी के टाइम में 2000 जो है वो मैं जाके पास हुई पार्लियामेंट से। आप भी सोमपाल जी उसके ऊपर बहुत रुचि दी और सपोर्ट किया, बहस हुई होगी पार्लियामेंट में। तो पहली कृषि नीति आई 2000 में, मैं अभी उस कृषि नीति को उसकी कॉपी लेना चाहता था, मुझे वेबसाइट से मिनिस्ट्री की कृषि नीति की कॉपी नहीं मिली। उसके बाद में 2007 में स्वामीनाथन कमीशन ने एक फार्मर्स पॉलिसी और बनाई, वो भी आई, पर उसको पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट किया कैबिनेट ने, और 2007 में वो नीति बनी कृषि कृषक कल्याण की, फार्मर वेलफेयर की। तो एक तो बात यह है कि अब हमें रिविजिट करना चाहिए इन नीतियों को कि नीतियाँ हमारे लायक हैं और इन नीतियों में क्या बदलाव हो, और कौन सी नीति, क्यों दो नीति रखें, हम एक ही रखें ना, कृषि और कृषक के कल्याण की नीति हो। तो एक तो वो नीति हमारी, हमें लाने का जोर देना चाहिए। एक जो है, क्यों ना हर महिला किसान आयोग, शेड्यूल कास्ट आयोग, अरे किसान आयोग कहाँ है? भारत का एक किसान आयोग है, कोई किसी स्टेट का, स्टेट के हैं एक दो बने हैं, अजय इज दाओ लुकिंग आफ्टर पंजाब, जहाँ अच्छा थोड़ा काम हो रहा है। मैं चेयरमैन रहा वहाँ हरियाणा का, अब वहाँ पे वो चार्ज दे रखा है उसको सेक्रेटरी को, तो एडमिनिस्ट्रेटर किसान आयोग चला रहे। और हरियाणा में बना था, राजस्थान में बना था, आज नॉन फंक्शनल है, कर्नाटका में बना था, नॉन फंक्शनल है। तो क्यों ना ये और हमारा माध्यम क्या है? क्या हम सड़क पर बैठ के ही बात करें सरकार से? क्या हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का कोई माध्यम है? और वो माध्यम क्या है? इस तरह के आयोग होने चाहिए जो आपस में आपकी बात को समझे और जो सही है वो किसान सरकार तक पहुंचाए और उस पर नीतियाँ बनवाएं। और ये काम बहुत अच्छा हो सकता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। इसलिए भारत सरकार को भी चाहिए एक परमानेंट फार्मर्स वेलफेयर कमीशन बनाना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बनाना चाहिए। तीसरा जो है कि एग्रीकल्चर को कहा गया है कि स्टेट सब्जेक्ट है, और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हर स्टेट अपना डिसाइड करे एग्रीकल्चर के बारे में। तो अगर आपने बाजरा आपने पैदा किया राजस्थान में और MSP जो है वो हरियाणा में ठीक मिल रही है, प्रोक्योरमेंट भी हो रहा है, तो मैं बाजरा अपना राजस्थान से हरियाणा की मंडी नहीं ला सकता। भाई क्यों नहीं ला सकते? आप कह रहे हो ये नए लॉ आए हैं, कहते हैं हम एक नेशनल फार्मर जो है वो बना देंगे, यूनिट हो जाएगा, सारा मार्केट जो है नेशनल मार्केट बन जाएगा। तो नेशनल मार्केट बन जाएगा तो अब मुझे 2150 जिसकी क्विंटल की जो लास्ट ईयर डिक्लेयर्ड प्राइस थी, मुझे 1900 रुपए में बेचनी पड़ी। और इसीलिए आज ये कारण है कि जो है वो सारे लोग यूपी से भी और जगह से भी हरियाणा पंजाब की मंडियों में ला करके बेचना चाहते हैं गेहूँ और धान को। तो ये MSP का जो सिलसिला है, ये भी शायद सोपा जी बात करेंगे इस पर, तो MSP का जो सिलसिला है, इस सिलसिले को हमें सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। सरकार ने जब चला रखा है, कह रही है कि है रहेगा, तो है रहेगा, तो इसको ज़रा ऐसा कर दो ना कि किसान को जो आप डिक्लेयर करते हो उससे कम पैसा ना मिले। किसान भी एक व्यावसायिक आदमी है, वो भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक तरह से खुद लगाता है और पैदा करता है जैसे कोई इंडस्ट्री वाला करता है। पर हमारी जो है वो लागत की कोई अंदाज प्रॉपर नहीं होते और उसकी कीमत कोई और ही डिसाइड करते हैं। तो उसकी कीमत हम कब डिसाइड करेंगे? क्या क्या उसका प्रारूप हो सकता है? तो एक ये जो सेंटर स्टेट के बहुत मसले हैं, पंजाब के पास बहुत पानी है, हरियाणा को आज तक पानी नहीं दिया, सतलज जो कैनाल जो है यमुना सतलज कैनाल, बंसीलाल जी ने उस टाइम में कैनाल जो है वो भिवानी तक बना दी थी, और वो सारी की सारी बुर गई है मिट्टी से। अब आज करोड़ों रुपए लगा करके बेचारे ने उन्होंने बनवाई कि ये पानी वहाँ तक पहुँचेगा, पर पानी आज तक हमने फैसला करके दिया ही नहीं। कावेरी का झगड़ा वहाँ पे हमेशा कर्नाटका और तमिलनाडु का चलता रहता है, तो इसके झगड़ों को कौन सुलझाएगा? तो एक जैसे आपने GST बनाई, तो एक किसानों के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी एक नेशनल फार्मर वेलफेयर जो है वो काउंसिल क्यों नहीं बनाते, जिसमें ये कि कितनी चीज़ कहाँ बिकेगी, कहाँ जाएगी, और मैं आज एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, पर कह दिया जाता है नहीं, प्याज बाहर नहीं जाएगा, कह दिया जाता है आलू इस बार बाहर नहीं जाएगा, तो अगला मेरा खरीदेगा कौन नेक्स्ट टाइम, मेरा मार्केट कैसे बनेगा। तो ये एग्जिम पॉलिसी जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी को भी हमें सुदृढ़ करना होगा, और हमें जो है एक जो मैं MSP की बात कर चुका, और एक सब्सिडी की जो बात है उसकी मैं और कहना चाहूँगा कि भारत सरकार और प्रदेश और देश दोनों मिला के करीब 4,00,000 करोड़ एनुअली सब्सिडी में खर्च करते हैं कृषि में। हमने ये वर्कआउट किया और सरकार को रिकमेंडेशन भी दी है कि इसको आप सब्सिडी के बजाय इंसेंटिव में कन्वर्ट कर दो। जैसे अब आपने एक स्कीम चलाई है कि सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम चलाई है, कहने को तो 18 करोड़ जो कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अरे फैमिली तो किसानों की 16.4 करोड़ ही है, 18 करोड़ किसको बांट दिए, पहली बात तो। अच्छा अगर वो है भी तो उन कार्ड के ऊपर मैं टेस्ट कराऊं तो मैं कहाँ कराऊं, और मैं टेस्ट कराऊं और मैं उसके अंदर अगर मेरी मैं खार है और उसमें मुझे जिप्सम डालनी है तो मुझे आप सब्सिडी नाइट्रोजन पे क्यों, यूरिया पे क्यों देते हो, मुझे उस पर क्यों नहीं देते जिसमें मुझे चाहिए, जिससे मेरी ज़मीन ठीक होगी, पैदावार भी ठीक होगी। तो ये जो अच्छी खेती और जिसको प्रॉपर वे में इसको इंसेंटिवाइज किया जा सकता है अच्छे कामों के लिए, और उसके लिए मैं कहता हूँ कि ये अपफ्रंट लोगों को, किसानों को दिया जाए, कम से कम 1,00,000 रुपया हर किसान फैमिली को मिले जो 10 एकड़ तक अगर उसकी ज़मीन है, ये तो प्रति एकड़ उसको 10,000 की जो है वो एडवांस पेमेंट दिया जाए, ताकि वो अपने हिसाब से अच्छी चीज़ पे उसको इन्वेस्ट करे, और अगर वो ठीक करता है तो उसको आप दोबारा दीजिए, मत दीजिए, और उसका मॉनिटरिंग कीजिए। और एक इतनी स्कीमें हैं 50-50 साल से चल रही है, सरकार ने कभी रिव्यू ही नहीं किया। मैंने अभी एक कमेटी में रिव्यू करने की कोशिश की तो देखा कि नीति आयोग वालों को भी पता नहीं था कि स्कीमों का नाम क्या है, और जब वो मैंने कहा ये स्कीमें क्यों चल रही हैं और इनको रिव्यू किया गया क्या कभी, कहते जी नहीं जी ये तो बहुत पुरानी चल रही है, बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी तो सभी है पर इनको आप दूसरी स्कीमों में बदल सकते हो, आप आज युवा मिशन क्यों नहीं चलाते, आप युवाओं को आगे लाना है, उनकी रुचि लानी है, उनका स्किल डेवलप करना है, उनको एंटरप्रेन्योर बनाना है, उनको एक्सटेंशन एजेंट बनाना है, उनको सर्विस प्रोवाइडर बनाना है। तो इसके ऊपर भी एक मेरा छोटा सा लेख आपके बुकलेट इसमें है दिया हुआ, कुछ जो चाहे भाई लोग आए हैं वो ले लें, कुछ कॉपीज है। तो ये जब तक संभव नहीं होगा तो नहीं हम जो है वो खेती में विभिन्नता नहीं ला सकेंगे, हमारा खेती का प्रारूप हम बदल नहीं सकेंगे, और अब आवश्यकता है कि हम इस खेती के जो व्यवसाय को एक आधुनिक व्यवसाय की तरफ ले जाएं और उसके लिए अच्छे ज्ञान को ले जाएं, और ऐसे संस्थान जहाँ से ज्ञान जाता है ये किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और इसके लिए जो भी योजनाएं हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है, तो वहाँ पे क्यों नहीं एग्री क्लिनिक खुले। अरे पॉली क्लिनिक तो सबके लिए है, मेडिकल के लिए, एग्री क्लिनिक कहाँ है, किसके पास जाऊँ मैं, इधर से उधर भागते फिरते हैं, मैंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना है कहाँ से कराऊँ, 30% मेरी सक्सेस है तो फिर मेरे को तो मुश्किल ही मुश्किल है ना। और अच्छे सांड का सीमन कौन यूज़ करेगा, तो ऐसे लोगों को अगर आप पैरावेट को ट्रेन कर देंगे तो वो अपना भी रोजगारी करेंगे, गलत चीज़ किसान तक नहीं पहुंचाएंगे और किसान का भी फायदा होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं चाहता था कि आपके साथ में मैं रखूं, और कई ऐसे बिल्स हैं जो बहुत सालों से पड़े हैं, उनको क्यों नहीं पास करते, जैसे अब सीड बिल है, आज 40 साल से रिवाइज ही नहीं हुआ, हमें सीड में आगे बढ़ना है, सीड में एक्सपोर्ट करना है, यही नहीं बना ना, बाहर भेजना है, और वेजिटेबल का सीड आज हम बाहर से मंगाते हैं किसी भी अच्छी वेजिटेबल का सीड या फ्लावर का सीड 1 से 1.5 लाख रुपए किलो से कम नहीं है, और वो बाहर से आता है। भाई क्यों, हम यहाँ नहीं पैदा कर सकते, हमारे पास क्या साधन नहीं है? तो ये सब बातें आगे तक हमें देखनी होगी, पहुँचानी होगी। क्रॉप इंश्योरेंस है, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस करें और जो है वो कंपल्सरी हो जाए कोई भी दूध देने वाले जानवर का लाइफ स्टॉक। मेरे यहाँ तो मेरे जो भी रिश्तेदार हैं अक्सर यही कंप्लेंट रहती है कि बाद साहब इस साल भैंस मर गई, मैं तो मर गया। अरे भाई इंश्योरेंस क्यों नहीं, उनको मिलता क्यों नहीं, प्रॉब्लम क्या है? क्या किसान नहीं देता या कोई स्कीम नहीं है? और क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम पे तो बहुत बातें आजकल टीवी पे भी आते हैं, आप सुनते होंगे। लैंड लॉज को भी हमें सुदृढ़ करना होगा कि अगर कोई टेनेंट है तो टेनेंट को हम 1 साल या 2 साल से ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि वरना मालिक बन जाएगा। और हम एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है दिल्ली में बैठे हुए खेती कराते हैं, तो वो टेनेंट फिर 2 साल के लिए कौन खर्चा करेगा कि मैं इस ज़मीन को थोड़ा उपजाई बनाऊं? वो तो उससे जो कुछ फ़ायदा ले सकता वो और ले लेगा। तो टेनेंट लॉ भी ऐसे हों जिसमें आपकी जो मालकियत है वो ना जाए, और टेनेंट भी उसका भी फ़ायदा हो, वो 5-7 साल तक लगातार खेती करता रहे ताकि उसका इंटरेस्ट उसमें हो। अब वही सुल्तान सिंह को मैंने कहा, भाई तुम ये हरियाणा के जोड़ों में बहुत तालाब में पानी है जोड़ों में जहाँ भैंसे जाके जो है वो नहाती हैं, तो तुम इसमें मछली क्यों नहीं पालते? कहता जी मछली तो पालूँ पर इन्होंने एक्ट बना रखा है 2 साल से ज़्यादा देते ही नहीं, तो मैं 2 साल में क्या करूँगा, 2 साल तो इसकी सफाई करने में मेरा खर्चा लग जाएगा। तो हमें थोड़ी सोच को वो हमें कहते हैं थिंक आउट ऑफ बॉक्स, तो अपने सोच को थोड़ा बदल के आगे से सोचने की आवश्यकता होगी और नए नए प्रोग्राम लाने की आवश्यकता होगी, और सरकार को भी सोचना होगा कि किसानों की आमदनी दूनी करने के लिए नई बातें क्या हों, नए लॉज क्या हों, नए तरीके क्या हों। और सिर्फ ये मार्केटिंग एक्ट, मैं समझता हूँ इस पर भी सोमपाल जी बात करेंगे, तो मार्केटिंग एक्ट लाए तो गए पर वो इतनी जल्दी में क्यों लाए गए? ताकि लोगों के मन में भय रहे कि ये कोई गलत है, कोई काम गलत हुआ। इतने जल्दी तो पार्लियामेंट में कोई लॉ अप्रूव होता नहीं है, तो कम से कम डिस्कशन हो जाता, बात हो जाती, जो कुछ कमियां हैं उनको इम्प्रूव कर लेते और उनको और सुदृढ़ बना लेते, क्योंकि ये तो ज़रूरी है कि ये जो है HFMC एक्ट है जो किसान को मंडी में ही जाके देना। अब मैं सब्जी उगाता हूँ वो भी मंडी में जाके क्यों दूँ, मैं कहीं भी बेच सकता हूँ। तो अगर उससे बाहर निकल सकते हैं तो निकलना तो चाहिए, पर निकल के हम दें किसको, ये ना कि हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन कर ले, तो उसका भी थोड़ा ध्यान देना होगा। और उसके लिए जो है किसानों को सहकारिता में अपने योगदान से आपस में मिलकर और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के आगे आना होगा, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपना जो है आज का ये विषय का व्याख्यान है वो समाप्त करता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कप्तान सिंह जी कि ये संस्थान बनाई गई, मैं भी इसमें शुरू में बहुत जुड़ा रहा, और जुड़ा क्या रहा, मतलब रामनिवास जी, नाथुराम जी और जाकर साहब के पास बैठते थे अक्सर, और वही हमारे मेंटर थे और कुछ समझाते रहते थे। तो ये संस्थाएं बनाई थी इसलिए कि गाँव के किसान, गाँव के बच्चों को आगे आके और बढ़ाया जाए और उनको नए नए आयाम के बारे में बताया जाए। तो ये नए नए आयाम के लिए कुछ जो कुछ हो रहा है वो तो अच्छा है, उसके लिए तो आपकी तारीफ, बहुत तारीफ, और उसको जितनी तारीफ करें मैं कहता हूँ आप सब लोग ताली बजा के तारीफ करें। पर ये नहीं कि अब यही इसी से हम सेटिस्फाई हो जाएं, अब आपकी प्रेसिडेंसी है, इस प्रेसिडेंसी में कोई नया जो है यहाँ पे रूप आप दीजिए, जो कुछ उसमें संभव हो सकेगा हम आपके साथ लगे हैं। आप जब भी कहेंगे तैयार हैं। जो कुछ जानकारी की बात है और कुछ मैंने पब्लिकेशंस आपको दिए हैं, भारत सरकार को भी एक रिपोर्ट, भारत सरकार ने कमेटी बनाई थी जिसकी चर्चा सोमपाल जी करेंगे, तो दो साल पहले वो भी दी थी कि फार्मर की एग्रीकल्चर कैसे सिक्योर और सस्टेनेबल हो, और उसके ऊपर बहुत रिकमेंडेशन दी हुई हैं, पर उन रिकमेंडेशंस पे एक्शन होने की आवश्यकता है, तो एक्शन भी आगे लाने की ज़रूरत होगी। तो इन्हीं बातों के साथ फिर मैं आपका बहुत बहुत एक बार धन्यवाद अदा करता हूँ, और आप सभी का कि आपने मुझे जो है बड़े जो है शांत दिल से सुनने का मौका दिया। थैंक यू।